ॐ शान्ति। आप सभी त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं। आप सबको त्रिकालदर्शी परमात्मा पढ़ाई के द्वारा सब कुछ पहले से ही बता दिया है और बता रहा है कि लास्ट सीन क्या होगी, प्रेजेंट में क्या करना है और लास्ट में क्या होगी। तो ये तो आप समझते हैं कि लास्ट की सीन एक तरफ अति हाहाकार तो दूसरी तरफ जय जयकार होगी। जो विनाश काले विपरीत बुद्धि आत्माएं हैं, जिन्होंने शिव बाबा को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, मान नहीं रहे हैं, वो अंत में बहुत दुखी होकर रोएंगे, चिल्लाएंगे, पछताएंगे। दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं का वार होगा, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि का ये फुल फोर्स पर होगा। खाने पीने के लिए नहीं होगा, चारों तरफ मार काट, यही खून की नदियां बह रही हो। तो एक तरफ तो ये हाहाकार की सीन चलेगी, दूसरी तरफ जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जिन ब्राह्मण आत्माओं ने वर्तमान में अर्थात संगम युग पर भगवान के श्रीमत के प्रमाण अपने पुरुषार्थ को बढ़ाया है और सर्व प्राप्तियां करके संपन्न बन गए हैं, वो खुशी में नाचेंगे। उनकी चारों तरफ जय जयकार होगी। ब्राह्मण आत्माओं में जो आत्माएं इस समय अलबेली हैं पुरुषार्थ में, चाहे योग लगाने में, चाहे दिव्य गुणों की धारणा में या किसी प्रकार की सेवा में अलबेलेपन है, ऐसी आत्माएं लास्ट में खून के आंसू रोएंगे। इतना अज्ञानी आत्माओं को भी दुख नहीं होगा जितना ब्राह्मण आत्मा को होगा। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज है और उस समय और स्पष्ट होगी। आए अब मैं ये जाकर बनूंगा, आए अब मैं ये चंडाल बनूंगा, अब ये होगा, वो होगा, पश्चाताप। तो अंत की सीन हाहाकार और जय जयकार दोनों की। तो हम आप ब्राह्मण आत्माओं को ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अंत में आत्मा खुशी में नाचते गाते अपने शरीर को छोड़कर अपने बाबा के साथ साथ घर चले और फिर ब्रह्मा की आत्मा के साथ साथ स्वर्ग में आकर राज्य करे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो अपना अंत मते सुहाना होगा। अब ऐसे पुरुषार्थ के लिए जैसे कहीं भी जाना होता है तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है। ये हम आप सबको पता है कि ये शरीर परिवर्तन होगा, ये दुनिया परिवर्तन होने वाली, आने वाली सतयुगी दुनिया है। चलना अपने घर परम धाम है। परम धाम जाना है, वहां ये शरीर नहीं जाएगा। इसलिए इस शरीर का भान अभी छोड़ना है। अगर शरीर का भान नहीं छोड़ पाए तो परम धाम में आप विद आनर जा नहीं सके। धर्मराज की सजाओं के द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। अगर सजा मिली तो पद तो भ्रष्ट हो ही जाए ऑटोमेटिक। इसलिए पुरुषार्थ करके इसका भान छोड़ना है। सतयुग में आना है, वहां सर्व आत्माएं दिव्य गुण संपन्न धारी होती। इसलिए अभी से ही मुझ आत्मा को सर्व दिव्य गुणों से संपन्न बनना ही है। ये अटेंशन अभी से देना है तो फिर अंत में अपना सफल होगा। तो हम सबको घर भी चलना है और राजधानी में आना है। अब वहां चलने के लिए पहले से तैयारी करनी, जैसे आप लोगों को मधुबन आना था तो पहले से तैयारी किया या नहीं? 3 महीना 4 महीना पहले टिकट कटाते हो, जो भी प्रबंध है यथाशक्ति सब पहले से करते हो। अगर कोई तत्काल में भी आए होंगे तो भी 2 दिन पहले टिकट कराना पड़ता है। सामान सब, कपड़ा लत्ता, जो भी चीज आवश्यकता है सब तैयारी करनी पड़ती। तो आप सोचो कि हम ब्राह्मण आत्माएं घर चलेंगी और जब साकार सृष्टि पर आएंगी तो सतयुग से लेकर संगम युग तक हमारी आत्मा पार्ट बजाती रहेगी। और आत्माएं तो बीच में आएंगी लेकिन ब्राह्मण आत्माएं आदि से लेकर संगम युग के अंत तक पार्ट बजाती रहेंगी। अब ब्राह्मण आत्माओं को सतयुग से लेकर तो क्या परम धाम से लेकर और सतयुग या संगम युग के अंत तक हमें अभी खाता जमा कर सिर्फ सतयुग नहीं लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं पूरे कल्प के पार्ट धारी हो पूरा कल्प में आप आत्मा का श्रेष्ठ पार्ट है तो हमें पूरे कल्प के लिए तीन प्रकार के खातों के खजाने को जमा करना है। पहला है पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध का खाता। पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध का खाता जो सतयुग त्रेता में चलेगा। दूसरा है सेवा के द्वारा पुण्य का खाता जो द्वापर कलयुग में चलेगा और तीसरा संतुष्ट रहकर अन्य आत्माओं को संतुष्ट करके दुआओं का खाता जो संगम युग पर अभी चलेगा। तो इन तीनों प्रकार के खाते से ब्राह्मण आत्मा को संपन्न बनना है। पहला है पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता। इस समय आप आत्मा जैसा पुरुषार्थ करेंगे उस पुरुषार्थ के प्रमाण सतयुग में आपको पद मिलेगा। तो आप इस समय ऐसा पुरुषार्थ करो जो संपूर्ण बनो। उसकी विधि है चारों सब्जेक्ट्स में ज्ञान योग धारणा सेवा इन चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेकर पास विद आनर बनना। ज्ञान योग धारणा और सेवा चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेकर पास विद आनर बनना। ये जिस आत्मा ने किया वो सतयुग में राज घराने में प्रारब्ध भोगेगी और नहीं तो नौकर चाकर आदि जैसा पुरुषार्थ वैसा पद। तो इन चारों सब्जेक्ट्स की धारणा का आधार क्या है कैसे चारों सब्जेक्ट्स पूर्ण रूप में आत्मा में धारण हो सकते अर्थात हम उनका स्वरूप बन सकते हैं। पहली बात है ज्ञान। ज्ञान की धारणा का आधार है आप मुरली सुनते हो मुरली सुनते फिर भी पॉइंट भूल जाती है। जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा कहीं एक कान से सुनते जाते हैं दूसरे कान से निकलता जाता है पता ही नहीं पड़ता कि क्या सुना है। वैसे भी अभी अपने दिल पर हाथ रखकर देखो तो सुबह की मुरली याद नहीं कोई पॉइंट याद होगी तो हो। इसका कारण क्या है, क्यों ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है? इसका मुख्य कारण है कि ज्ञान बुद्धि में बैठने का आधार है पहली बात बुद्धि की पवित्रता। जब तक बुद्धि पवित्र नहीं होगी, दिव्य नहीं होगी, तब तक भगवान का ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। ये आप मुरली में बार बार सुनते हैं कि शेरणी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। भाव यही है कि परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। तो पहली बात है, अपनी बुद्धि को दिव्य बनाओ। जब तक बुद्धि दिव्य नहीं बनेगी, तब तक आपका मन भटकता रहेगा मुरली सुनते समय। क्यों? क्योंकि मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। जब बुद्धि दिव्य होगी, तब मन को व्यर्थ या बुराई की तरफ बुद्धि जाने ही नहीं देगी। जैसे देखो, आप कोई संकल्प करते हो, कुछ भी संकल्प आपके मन में आया, तुरंत बुद्धि निर्णय देती है उसी सेकंड, ये करो या ना करो, सोचो या ना सोचो, सेकंड में होता है। अगर आपकी बुद्धि दिव्य है तो निर्णय कैसा देगी? दिव्य निर्णय देगी ना, और फिर मन को उस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसा बुद्धि निर्णय देगी, मन को वैसा करना पड़ता। बुद्धि को कंट्रोल मन नहीं करता है, लेकिन मन को कंट्रोल बुद्धि करती। तो बुद्धि को दिव्य बनाओ। जब आपकी बुद्धि दिव्य बन जाएगी तो ज्ञान सहज बुद्धि में ठहरेगा। अब बुद्धि को दिव्य बनाने की विधि क्या है, कैसे हमारी बुद्धि दिव्य बने? बुद्धि को दिव्य बनाने की विधि है शुभ संकल्पों के द्वारा बाबा को इस देह अभिमान की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि सौंप दो। इस विधि से बाबा, अब मैं आत्मा इस देह अभिमान की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि, बाबा अब मैं आपको अर्पित कर रही हूं। बाबा अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं आत्मा आप पर अर्पित कर दिया है। ऐसे शुभ संकल्प से बाबा के आगे अर्पित करो। तो देखो बाबा की तरफ से क्या जवाब आएगा, अच्छा बच्चे, आपने बुद्धि को अर्पित कर दिया, अब इस बुद्धि पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, अब बाप का अधिकार है। अब इस बुद्धि के द्वारा श्रीमत प्रमाण निर्णय करना बाबा की तरफ से है। बता रहे थे बुद्धि को दिव्य बनाओ। दिव्य बनाने की विधि बुद्धि को बाप के आगे अर्पित कर दो। जब आप अर्पित करेंगे बाबा कहेगा श्रीमत प्रमाण जजमेंट करो, जो कुछ भी निर्णय दो आप जजमेंट श्रीमत प्रमाण करो। इससे आपकी बुद्धि धीरे धीरे दिव्य बनती जाएगी और जब बुद्धि दिव्य आपकी बनती जाएगी उसकी निशानी है कि आपको बुद्धि के द्वारा कोई अवगुण नहीं दिखाई पड़े, कोई भी अवगुण नहीं दिखाई। बुद्धि को भी नेत्र कहते, दिव्य नेत्र कहते। दिव्य नेत्र में दिव्यता ही दिखाई देगी। कोई गलती कर रहा है उस गलती में भी अगर आपकी बुद्धि दिव्य है तो दिव्यता को ही देखे। एक उदाहरण के रूप से आपको बताते हैं। हैं कि दिव्यता है तो दिव्य ही दिखाई देगा। इसी हाल में बाबा के सीजन में पार्टियां जैसे आई हैं आई हुई थी, बाबा मुरली चला रहा था। तो यहां अभी आपको बाबा के दिन बताया जाता है कि आप लोग दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, बाबा कहे तो बजाना, ऐसे डायरेक्शन दिया जाता है। तो उस समय भी ऐसे डायरेक्शन दिया गया था कि कोई ताली नहीं बजाओ, बाबा कहे तो बजे। तो बाबा मुरली चला रहा था, बीच में बच्चों ने बहुत जोर से ताली बजाई। जब ताली बजा के तो थोड़ी देर बाद बंद हो गई, बाबा मुरली चलाने लगे। थोड़ी मुरली चली होगी, कोई पॉइंट ऐसी आई, फिर जोर से ताली बजी। तो बाबा ने खुद कहा मुरली चलाते हुए, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, आवाज ब्राह्मणों के लिए ठीक नहीं। बाबा मुरली चलाने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर ताली बजी जोर से। फिर बाबा ने कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, ब्राह्मणों का कल्चर शांत है, दोनों हाथ की ताली से घमासान हो जाता है, घमासान हो जाता है, इसलिए दोनों हाथ की ताली नहीं। और बाबा मुरली फिर थोड़ी देर के बाद जोर से ताली। अब आप सोचो, जब भगवान डायरेक्ट मना कर रहा है और उसके बावजूद भी बच्चे ना माने, अगर ताली बजाएं, तो आपके मन में क्या संकल्प आएगा, आपकी बुद्धि क्या निर्णय देगी? क्या निर्णय देगी? यही कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जब बाबा कहता है तो मानना चाहिए ना। हम ताली बजाते इसीलिए हैं, बाबा आपकी पॉइंट मुझे बहुत पसंद आई, मैं धारण करूंगा, और अपनी खुशी बाबा तक दे रहे। और जब स्वयं बाबा मना कर रहा है ये भी नहीं मान रहे, तो यहां सबके मन में तो संकल्प चल गया। कई तो उठ के देखने लगे कौन ताली बजाता है, क्या है, थोड़ा वायुमंडल क्लास का भी बदल गया उस समय। तो यहां तो सबके मन में ये संकल्प चल रहा था, और उधर बाबा ने क्या कहा, क्योंकि बाबा दिव्य है, तो बाबा ने कहा कि आज बाप दादा मुरली चला रहा है, बच्चों को ताली बजाने के लिए मना करता है, लेकिन बच्चों में इतना उमंग है कि अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी ताली बजाए जा रहे। देखो बाबा उस पॉइंट को कितना पॉजिटिव रूप से लिया, और हम कितना नेगेटिव रूप से ले रहे। तो जो दिव्य है उसको हमेशा दिव्य ही दिखाई दे। आप अपनी बुद्धि को चेक करना कि हमारी बुद्धि कहां तक दिव्य बनी है, थर्मामीटर है, कितना हमें बुराई अवगुण कमी दिखाई पड़ती है, ये थर्मामीटर। اگر دکھ رہی ہے تو بھی بہت دور ہے، بہت دور ہے تو گیان دھارن نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی کرو، کیونکہ بدھی پوتر نہیں ہے تو گیان کی دھارنا، اس لیے گیان کی دھارنا کے لیے سب سے پہلے بدھی کو دیو بناؤ، یہ ابھیاس کرو، ہے بہت سہج، بدھی کو بابا کے آگے ارپت کر دو، اور جیسے مرلی میں سنتے ہو اسی پرمان ججمنٹ کرتے جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی پرستھتی آپ کے گھر میں ایسی ہو جو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کیا کریں، بزنس میں ہے کہیں بھی، تو وہ آپ نمت آتما ٹیچر سے پوچھو، جو ٹیچر آپ کو رائے دے وہ بھگوان واچ، اس کو شریمت کہا جائے، کیونکہ بابا نے ٹیچر کو نمت تو پہلی بات بدھی کو دیو بناؤ، دوسری بات آپ روز من کو ہوم ورک دو، بدھی کو دیو بنانے کے لیے من کو ہوم ورک دو، جس چیز کا ہوم ورک دیں گے وہ ایک بات سارے دن میں جب تک سوئیں گے نہیں، کم سے کم نہیں 400-500 بار من میں ریپیٹ ہوگا، اور وہ چیز آپ کے سوروپ میں آ جائے، اگر اپنی کمی دیکھو تو سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم من کو خالی چھوڑا ہوا ہے، کچھ کام نہیں دیا ہوا، اور ہوم ورک نہ دینے سے، من کو کام نہ دینے سے من اپنے آپ سوچتا ہے، تو اپنے آپ کیا سوچے گا، جو پورو سنسکار ہیں ان سنسکاروں کے بس سوچے گا، یا جیسی پرستھتی ہے اس انوسار سوچے گا، گیان کے انوسار نہیں سوچے گا، شریمت کے انوسار نہیں سوچے گا، پرستھتی کے انوسار سوچے گا، پرانے سنسکار کے انوسار سوچے گا، اور جو چیز ایک بار سوچتا ہے وہ سنسکار اور پکا ہوتا جاتا ہے، وہ سنسکار اور پکا ہوتا جاتا ہے، اس لیے من کو کام دو، ہوم ورک دو، جتنا جتنا ہوم ورک دیتے جاؤ گے جان کی دھارنا بہت اچھی ہوتی ہے اور سمپورنتا بہت نزدیک آ جائے، کیسے، جیسے دیکھو مان لو آپ نے کوئی ایک پوائنٹ لیا دھارن کرنے کے لیے اور سارا دن اس پر اٹینشن دیا، تو اگر ایک پوائنٹ پر آپ سارا دن اٹینشن دیتے ہیں تو کیا وہ پوائنٹ سوروپ میں آ جائے گی یا نہیں آ جائے گی، کوئی بھی پوائنٹ 8-10-12 گھنٹہ اس پر اٹینشن دیا، منن چنتن کیا، پریکٹس کیا، پرسارت کیا، تو سوروپ میں آئے گی، ایک دن میں ایک پوائنٹ سوروپ میں آ جائے تو 30 دن میں 30 پوائنٹ آ جائے، संपूर्ण बनने में देरी नहीं, लेकिन मन को खाली छोड़ा हुआ। इसलिए हम जैसा पुरुषार्थ चाहते हैं बढ़ नहीं पा रहा है, जो करना चाहते हो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मन बुद्धि कमजोर की कमजोरी रह जाती। और तीसरी बात, मन के द्वारा संकल्प से दान करो, और उससे ज्यादा वाणी के द्वारा ज्ञान दान करो। जितना वाणी के द्वारा ज्ञान दान करोगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। तो ये तीन बातें लाओ तो ज्ञान की धारणा हो। दूसरी बात है योग। योग की धारणा का आधार है अशरीरी भाव का अभ्यास। जितना जितना अपने को आत्मक स्वरूप में टिका पाएंगे उतना बात की या स्वतः बनी रहेगी। जैसे शरीर समझने से शरीर के संबंधी स्वतः याद रहते, कारोबार स्वतः याद रहता है, ऐसे आत्मा समझने से आत्मा का सर्व संबंधी शिव बाबा और आत्मा का सारा कारोबार स्वतः याद। तो पहला है अशरीरी होने का अभ्यास, दूसरा भगवान के साथ सच्चे दिल का प्यार, और तीसरा सर्व संबंध एक बाप से, सर्व संबंध एक बाप से। तो पहली बात है अशरीरी होने का अभ्यास। हम आत्माएं जब से बाबा के बच्चे बने हैं अशरीरी होने का अभ्यास कर ही रहे। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन सिर्फ मैं आत्मा हूं सिर्फ इस का अभ्यास करने से आप अशरीरी बन नहीं सकते। आपका अनुभव स्वयं बता रहा हूं, अगर आपको अशरीरी बनना है तो आत्मा की जो चार स्थितियां हैं उन चारों स्थितियों का अभ्यास करना पड़ेगा, जो भिन्न भिन्न समय पर है। जब चारों स्थिति का अभ्यास करो तब निरंतर अशरीरी होने की स्थिति आ सकती। पहली बात है चारों स्थिति है। पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, ये चार शब्द आप बाबा की मुरली में सुनते होंगे, कभी कोई शब्द कभी कोई शब्द कहता है, और ये चारों शब्द चार समय पर हैं। कब देही अभिमानी होकर रहना है, कब विदेही होकर रहना है, कब शरीरी होकर रहना है, ये अलग अलग टाइम पर है। तो जब तक ये हम चारों प्रकार की इस आत्मक स्थिति का अभ्यास नहीं करेंगे, आप निरंतर आत्मक स्वरूप की स्थिति बना नहीं। तो पहला है देही अभिमानी। देही अभिमानी अर्थात आत्मा देह का आधार लेकर के कर्म करे, काम काज करते हुए आत्मा देह का आधार लेकर कर्म करे। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं, पहली स्थिति। इन इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म, मैं हूं असल में आत्मा, शरीर से अलग हूं लेकिन देह का आधार लेकर कर्म कर रही हूं। कर्म बिना देह के नहीं होगा, और जब देह के बिना नहीं हो सकता तो आत्मा को देह का आधार लेना ही पड़ता है। इसमें भी दो स्थिति है, एक है मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा ये कर्म कर रही हूं, मैं आत्मा आंखों के द्वारा देख रही, एक इससे हाईएस्ट स्टेज है, जो लास्ट फाइनल स्टेज है वो है मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा ये कर्म करा रही हूं। ये बाप समान की स्थिति, वो है पहली स्थिति, न्यारी स्थिति। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं, ये न्यारी स्थिति है। और मैं आत्मा कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूं, ये उपराम स्थिति। तो पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी। जब आप योग में बैठते हैं उस समय देह की जरूरत नहीं है, माने आपको देह की स्मृति लाने की जरूरत नहीं है। कर्म इंद्रियों का आधार कर्म क्षेत्र पर लेना पड़ता है तो स्मृति आती है। लेकिन जब आप योग में बैठे हैं तब आपको इस देह की स्मृति की जरूरत नहीं है, मेरा सांस चल रहा है या नहीं, दिल धड़क रहा है या नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, सब काम अपने आप हो रहा है। आपको इसको भूल कर मैं आत्मा हूं इस स्मृति सो स्थिति में स्थित होकर बाप को याद कर। इस स्मृति सो स्थिति, ये है आत्म अभिमान। تیسرا ہے بدیہی، بدیہی ارتھات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی نہ کسی سومان میں استھت رہنا، میں ماسٹر سرو شکتیوان ہوں، ماسٹر بھگوان ہوں، ماسٹر پتیت پاون ہوں، جتنی بھگوان کی مہیما ہے وہ آپ کا سومان ہے، کسی سومان میں استھت رہو، سومان دیہ ابھیمان کو مٹاتا ہے، سومان میں رہنے سے درشٹی پرتی اسمرتی کرتی سب چینج ہو جاتی، کیونکہ منشی جیسا اپنے کو سمجھتا ہے ویسا وہ بن جاتا ہے، ابھی تک ہم سب کو یہ نہیں پورا آیا ہے کہ ہم دیوی بنیں گے یا دیوتا بنیں گے، ابھی تک یہ کانشیس جاگرت نہیں کرتے، اس لیے سادھارن روپ دھاری یہی اسمرتی رہتی، اور سادھارن روپ دھاری کی اسمرتی میں ماتا ہوں، پتا ہوں، ساس ہوں، بہو ہوں، بھائی ہوں، انہی اسمرتی کے کارن آپ کی اسمرتی بہت سادھارن رہتی، اور اسی بھان سے دیکھتے ہیں، جیسے مان لو ایک چھوٹا سا ایگزامپل، کوئی باپ ہے، ہاں ماں باپ بیٹھے ہیں دونوں، اپنی بچی کو دیکھتے ہیں، اب بچی کو آپ نے بچی کی درشٹی سے دیکھا، یہ میری بچی ہے، اب بچی کی درشٹی سے جس سمے دیکھا کیا اس سمے آپ بیکے کی اسمرتی میں تھے کہ میں برہما کمار ہوں؟ نہیں، کہ برہما کمار کے تو کوئی بچے ہوتے ہی نہیں، اس سمے پرانی اسمرتی ہے میں فلانا ہوں، سوچو اس چیز کو، اگر ابھی تک اتنا چھوٹا سا شروع کا فاؤنڈیشن نہیں پکا کر پائے ہو، میں برہما کمار ہوں، برہما کماری ہوں، یہ ابھی درشٹی برتی تک نہیں لا پائے ہو تو فرشتہ کیا بنو گے؟ ایسے ہی من میں بھلے خوش ہو جاؤ، فرشتہ بن جائیں گے، ابھی تو برہمن ہی نہیں پورا بن پائے، اس لیے پہلے آنترک یہ تو پکا کرو، اس کا مطلب نہیں بیٹی کو بہن کہہ کے بلاؤ، نہیں، اوپر سے تو جو شبد ہے وہی شبد ہے، لیکن آنترک استھتی کیا ہے، جیسے دیکھو جس سینٹر پر آپ جاتے ہو ٹیچر بہنیں، وہ بھی تو بہن ہی ہے نا، لیکن آپ کی آنترک استھتی ان کے لیے کیا ہے؟ یہ ہماری دیدی ہے، مرلی سناتی ہے، مہان ہے، ہے تو بہن ہی نا، شیو بابا کی وہ بھی سنتان، شیو بابا کی آپ بھی سنتان، دونوں بہنیں ہیں، بہن بھائی ہیں، لیکن نہیں، اسمرتی ہے، ہماری دیدی ہے، بہن ہوتے ہوئے بھی دیدی کی اسمرتی سے دیکھ رہے ہیں، ایسے لوکک میں بھی جو پریوار ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آنترک استھتی کیا بنانی ہے وہ تو دیکھو، اس کو کہتے بدیہی، چوتھا ہے اسریری، ارتھات جب آتما پرم دھام میں ہے تو وہاں شریر نہیں، بنا شریر کے، इसलिए बीच बीच में टोटल शरीर से डिटैच होकर परम धाम निवासी अपने घर निवासी पाप के पास पाप की गोद में बैठो। आप आत्मा और परमात्मा, यही मेरा घर है। मीठे बाबा ही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसा अशरीरी होने का तब आपकी आत्मा की स्थिति आ सकेगी। अच्छा, ओम शांति।